एक व्यक्ति के घर पर एक तोता था और उस तोते को पिंजरे में बंद करके रखा था। एक दिन वह तोता रोने लगा, बहुत रो रहा था तोता। उस तोते के मालिक ने सोचा कि बेचारा यह तोता लोहे के पिंजरे में है इसलिए रो रहा है, इसे चांदी के पिंजरे में रखना चाहिए। तब उस तोते को लोहे के पिंजरे से निकालकर चांदी के पिंजरे में रखा, फिर भी वह तोता रोता रहा। तब उस मालिक ने सोचा कि यह तोता चांदी के पिंजरे में है इसलिए रो रहा है, इसे सोने के पिंजरे में रखना होगा। तब बहुत सुंदर गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड का पिंजरा बनाया और फिर उस तोते को सोने के पिंजरे में रखा, लेकिन फिर भी रोता रहा। तब उस मालिक ने सोचा, नहीं नहीं, इस पिंजरे में अच्छे अच्छे हीरे जवेरात उसको डालना होगा, तब जाकर ये सुखी हो जाएगा। तो बहुत महंगे महंगे हीरे जवेरात उसमें फिट किए गए, लेकिन फिर भी वह तोता रोता रहा। तो पिंजरे को बदलने से कुछ नहीं होगा, जब तक उस तोते को भोजन नहीं दिया जाएगा, जब तक उस तोते को आहार नहीं दिया जाएगा, तब तक वह तोता प्रसन्न नहीं हो सकता है, सुखी नहीं हो सकता है। तोते को प्रसन्न करने के लिए पिंजरे को नहीं, उस तोते को आहार देना चाहिए। जैसे ही हम सब आत्मा है और आत्मा को प्रसन्न करने के लिए शरीर को प्रसन्न नहीं करना चाहिए, आत्मा के लिए कार्य करना चाहिए। हमारा वास्तविक हित किस में है? हमारा वास्तविक हित आत्मा की उन्नति में है। और हमारा अहित किस में है? हमारा अहित, हम लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण परमात्मा से अलग हो गए। यह जीवात्मा, यह आत्मा परमात्मा से अलग हो जाने के कारण इस संसार में भटकती है, दुखी होती रहती है। कृष्णेर बहिर्मुख भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापट या धरे। कृष्ण से बहिर्मुख होकर जब जीव भगवान से अलग हो जाता है, तब इस संसार में रहकर वो बहुत दुखी होता है। और वे तब तक दुखी होता है जब तक फिर से वह भगवान से जुड़ नहीं जाता है। तो हम सब लोग दुखी हैं, इसका कारण यही है कि भगवान से बिछड़ गए हैं। और यह जीव तब तक दुखी होता रहेगा जब तक भगवान को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर दृष्टांत देते थे कि एक बार एक मेले में एक पिता और पुत्र घूम रहे थे। अब मेले में तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो उस पुत्र ने अपनी पिता की उंगली पकड़कर रखी थी और दोनों मेले में घूम रहे थे। और पिता जो थे बहुत धनी थे, करोड़पति थे, परंतु मेले में घूमते घूमते उस पुत्र के द्वारा अपने पिता की उंगली छूट गई। पिता कुछ अलग चले गए, पुत्र अलग, और दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगे, परंतु ढूंढ नहीं पाए। अंत में पिता पुलिस स्टेशन में गए और जाकर वहां पर लिखाया कि मेरा पुत्र घूम गया है, यदि मिले तो मेरे पास पहुंचा देना। और यहां वह छोटा सा बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है, और जिस समय से पिता से अलग हो गया, उस दिन से, उस समय से इसने रोना शुरू किया। रोता रहा, रोता रहा, रोते रोते मेले से बाहर रास्ते में आ गया। रास्ते में कई लोगों ने देखा कि यह बालक रो रहा है, लगता है भूखा है, भोजन चाहिए। तो एक व्यक्ति ने उसे भोजन दिया, लेकिन भोजन करने के बाद भी वह बालक रोता ही रहा। तब किसी ने सोचा कि ठंड का समय है, बेचारे के पास कंबल नहीं है, चलो कंबल दे दो। और कंबल देने के बाद भी वह बालक रोता रहा। तब किसी ने सोचा कि इस बालक के पास पैसे नहीं है, बालक के जेब में 100-200 रुपए रख लिए, फिर भी वह बालक रोता रहा। भोजन दिया, पैसे दिए, कंबल दिया, फिर भी वह बालक रोता रहा। चौथा व्यक्ति जब मिला तो देखा कि यह बालक कोई साधारण घर का नहीं है, बड़े घर का, और रो रहा है। तो चौथा व्यक्ति उस बालक के हाथ को पकड़कर पुलिस स्टेशन में लेकर गया और पुलिस वालों को कहा, देखो ये बालक भटक गया है, रो रहा है, आप चेक करो ये किसका बालक है। तब तो पुलिस वाले खड़े हो गए, हम तो इसी को ढूंढ रहे थे, इसके पिताजी बहुत धनी हैं और यहां सब जगह पर वह नोट लिखा कर गए हैं। तुरंत पुलिस वालों ने पिताजी को फोन किया, पिताजी मर्सिडीज कार लेकर आए और बालक उसके साथ खुश होकर हंसते हुए चला गया। देखिए दृष्टांत बहुत छोटा है परंतु इससे उपदेश कितना सुंदर प्राप्त होता है। बहुत सारे उपदेश प्राप्त होते हैं कि वह बालक और कोई नहीं, हम ही हैं, और वह पिता और कोई नहीं, परम पिता भगवान कृष्ण है। जैसे वह मेले में वह बालक पिता से अलग हो गया और दुखी हो गया, वैसे ही इस संसार रूपी मेले में हम भगवान से अलग हो गए, और जिस दिन से वह बालक पिता से अलग हो गया और रोना शुरू किया है, वैसे हम भी जिस दिन से भगवान से अलग हुए हैं उसी दिन से हमारे जीवन में दुख आना शुरू हो गया है। और यह दुख तब तक रहेगा जब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं हो जाते हैं। वो बालक तब तक रोता रहा जब तक अपने पिता से नहीं मिला। इस संसार में कुछ लोग कहते हैं ना कि दूसरों को पैसा देना सबसे बड़ा कार्य है, परंतु आप देखिए कि यह बालक रो रहा था, एक व्यक्ति ने उसे धन दिया, पैसा दिया, लेकिन फिर भी वह बालक सुखी नहीं हुआ। इस संसार में कुछ लोग दान देते हैं, परंतु आप यदि किसी को दान देते हो तो क्या पता वह आपके पैसे को लेकर शराब पिएगा, और शराब पीकर वह पाप आपको भी लग सकता है। और आप किसी को करोड़ों रुपया भी दे दो, धन से कोई सुखी नहीं हो सकता है। अब देखिए जिसके पास धन है देख लीजिए वो सबसे बड़े दुखी है। तो धन कोई सुख का कारण नहीं है। तो किसी को धन दे देना ये कोई बड़ा दान और बड़ा कार्य नहीं है, या किसी को कंबल या कपड़े दे देना ये भी कोई बड़ा कार्य नहीं है। इस संसार में सबसे बड़ा कार्य क्या है? किसी भटके हुए जीव को उसके पिता के पास पहुंचा देना, यह है सबसे बड़ा कार्य। इस संसार में सब लोग भटके हुए हैं और सबके दुख का कारण क्या है कि भगवान से अलग हो गए हैं। तो इस संसार का जो जीव भटके हुए लोगों को भगवान से मिला देता है यह सबसे बड़ा दानी है, और यह सबसे बड़ा व्यक्ति है, और यह सबसे बड़ा हितेशु व्यक्ति है। किसी को पैसे देने वाला हित करने वाला नहीं है। पैसे देने से कोई हित नहीं होता है किसी का, कंबल देने से किसी का हित नहीं होता है, भोजन देने से हित नहीं होता है। वास्तविक हित किस में होता है? भटके हुए जीव को भगवान से जुड़ा देना। पुरोहित शब्द की व्याख्या चल रही है। वास्तविक हित किसे कहा जाता है? भटके हुए जीव को भगवान से जुड़ा देना। और यह संसार का भटका हुआ जीव भगवान से कैसे जुड़ेगा? जब यह संसार का जीव भगवान के बारे में सुनेगा तब जाकर भगवान के प्रति अपना संबंध स्थापित करेगा और भगवान के पास जाएगा। आफ्टर ऑल ये सब का अल्टीमेट निचोड़ क्या है? कि इस संसार में भटके हुए जीवों को भगवान की कथा सुनाना, यही है सबसे बड़ा हित, यही है सबसे बड़ा हित। तो भगवान की कथा सुनना ये सबसे बड़ा हित है, इसे हित कहा जाता है। परंतु जो व्यक्ति स्वयं तो अपना हित करता है, जो व्यक्ति स्वयं भगवान की कथा सुनता है, परंतु स्वयं के साथ साथ पूरे गांव को, पूरे नगर को, पूरे पूर को, पूर का अर्थ होता है गांव और नगर, जो व्यक्ति स्वयं कथा सुनता है और पूरे गांव और नगर को यह कथा सुनाता है उसे पुरोहित कहा जाता है। पुरोहित का वास्तविक अर्थ क्या है, अल्टीमेट निचोड़ क्या है? जो पूर का हित करे, पूरम हित करोति इति पुरोहित। जो पूर का हित करे, जो पूरे गांव का पूरे नगर का हित कर दे उसे पुरोहित कहते हैं। और कथा सुनने में ही सबका हित है तो वास्तव में आज पुरोहित परिवार ने एक ऐसा कार्य किया है जिससे यह पुरोहित नाम तीनों भुवन में अमर हो जाएगा। ब्रह्मा इंद्र चंद्र ये सब लोग इस नाम की सराहना करेंगे। वास्तविक हित करने जा रहे हैं ये परिवार। तो आइए इस पुरोहित परिवार की जो कृपा हम सब पर हुई है भागवत सुनने की और सुनाने की, तो इस कृपा का हम हृदय से लाभ उठाएं। यहां पर श्रीमद् भागवत परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति ये श्रीमद् भागवतम है। ये भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है और कहते हैं ऐसा भागवत सबको प्राप्त नहीं होता है। इस भागवत को सुनने के लिए क्या चाहिए, शास्त्र में लिखा है भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावै। कहते हैं कि पूर्व के जन्मों में, पूर्व के हजारों हजारों जन्म से जो व्यक्ति पुण्य और सुकृति करता है, हजारों हजारों जन्मों की पुण्य और सुकृति का जब एक साथ उदय होता है तब वह व्यक्ति भाग्यशाली बनता है। और कहते हैं कि ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है, कहते हैं सत्संगम च लभते। बहुत बहुत पुण्य और सुकृति का उदय होता है तब किसी व्यक्ति को सत्संग प्राप्त होता है, साधु का संग प्राप्त होता है। भक्तों, ये साधु का संग, आप सब संतों के बीच में भक्तों के बीच में बैठे हो, ये कोई साधारण बात नहीं है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पुण्य पुंज बिनु मिलहीन संता। ये संत, ये भक्त, ये वैष्णव जो है पुण्य के पुंज के बिना नहीं मिलते हैं। पुण्य चाहिए और पुण्य का पुंज माने बहुत सारे पुण्य जब कोई करता है तब जाकर उसे सत्संग प्राप्त। पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। पुण्य के पुंज के बिना संत नहीं मिलते हैं। तो मन में प्रश्न होता है तो संत मिलने के बाद क्या होता है? कहते पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता सतसंगति संस्रुति कर अंता। ये सतसंगति, ये सतसंग संस्रुति का अंत कर देता है। संस्रुति का अर्थ क्या होता है? संस्रुति का अर्थ होता है सम्यक रूपेण स्रिति माने सरकना। बहुत बड़ी व्याख्या है परंतु इतना ही समझिए, संस्रुति का अर्थ होता है संसार। यह संसार का अंत करने वाला है सत्संग। और तुलसीदास जी तो यहां तक कहते हैं यह सत्संग तीर्थराज प्रयाग से भी विशेष है। मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीर्थ राजु। उस तीर्थराज प्रयाग में जाकर स्नान करने के लिए ट्रेन में बैठना होगा और वहां जाना होगा, परंतु सत्संग तो चलता फिरता तीर्थ है। जहां पर बैठ जाता है वह तीर्थ स्थान हो जाता है। आज हमारा यह सिरोड़ी गांव, आज हमारा यह सिरोड़ी गांव अब कोई साधारण गांव नहीं रहा है, क्योंकि इस गांव में संतों का आगमन हुआ है, वैष्णव और भक्त पधारे हैं। श्रीमद् भागवत में मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं कि तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानी, भगवान के जो भक्त होते हैं वे जिस स्थान पर अपना चरण रखते हैं वह स्थान साधारण स्थान नहीं रहता, वह स्थान तो पवित्र तीर्थ बन जाता है। आज यह गांव साधारण गांव नहीं, आज यह गांव तीर्थ हो गया है। चाहे वृंदावन समझिए, गोकुल समझिए समझिए, या नैमिषारण्य समझ लीजिए, तो संतों का समागम तीर्थ के समान है। इसका वास्तविक लाभ क्या होता है? कहते हैं अज्ञान हेतु कृत मोह अंधकार नाशम। सत्संग प्राप्त करके अज्ञान के कारण हमारे हृदय में जो मोह है और मोह के कारण जो दुख होता है, यह दुख सत्संग से दूर हो जाता है। इसलिए तो रामायण में कहा है बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, बुद्धि प्राप्त नहीं होती। ऐसी बुद्धि सत्संग से मिलती है कि उस बुद्धि को प्राप्त करके व्यक्ति परम पद पर स्थित हो सकता है। कहते हैं भाग्योदयन बहु जन्म समार्जितेन, बहुत बहुत जन्मों तक पुण्य और सुकृति करने के बाद सत्संग मिलता है, और सत्संग मिलने पर कहते हैं सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, सत्संग प्राप्त होने पर भगवान की कथा मिलती है। तो भक्तों, यहां पर हमें दूसरा लाभ क्या मिला? सबसे पहला लाभ तो संतों का दर्शन, संतों का संग, और यहां पर दूसरा लाभ कहते हैं संतों के, साधुओं के मुख से भगवान की कथा सुनना। और इसी के साथ साथ कथा के बाद भगवान का शुद्ध प्रसाद खाना, तो एक साथ तीनों लाभ, त्रिवेणी धारा में हम सबको स्नान करना है, सत्संग में भी स्नान करना है, फिर कथा में स्नान करना है, और कथा के बाद प्रसाद में स्नान करना है। ये तो सब लोग जानते हैं, तीन लाभ यहां पर प्राप्त होगा। परंतु ये साक्षात भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से पहले, श्रीमद् भागवत को सुनने से पहले भागवत की महिमा जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक विषय वस्तु के बारे में हम नहीं जानते हैं तब तक उस विषय वस्तु के प्रति श्रद्धा नहीं होती है। तो भागवत की महिमा यूं तो बहुत बहुत जगह पर लिखी है, परंतु भागवत की महिमा भागवत में नहीं है। यदि भागवत ही अपनी महिमा गाने लगे तब तो यह बहुत बड़ा दोष हो जाएगा, जिसे आत्मश्लाघा कहा जाता है। आत्म माने अपनी ही प्रशंसा करना, यह तो बहुत बड़ा दोष है। संसार में जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा करता है उसे शास्त्र मरा हुआ कहता है, मरा हुआ है। तो भागवत स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करता है, इसलिए भागवत की महिमा अन्य शास्त्र में पद्म पुराण और स्कंद पुराण में बताई गई है। बहुत सुंदर अनेकों अध्यायों में भागवत की महिमा बताई गई है। इसी भागवत के कारण भक्ति महारानी के जो दो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों जवान हो गए, हृष्ट पृष्ट हो गए और सुख को प्राप्त हो गए। और इसी भागवत के कारण, इसी भागवत के द्वारा प्रेत योनि को प्राप्त ऐसे धुंधुकारी की मुक्ति हुई। पद्म पुराण में बहुत सुंदर कथा है। तुंग भद्रा नदी के तट पर एक बहुत सुंदर गांव बसा हुआ था और उस गांव में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। जन्म से धनी थे। वैसे तो ब्राह्मणों के पास धन नहीं होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी की कृपा ब्राह्मणों से हट गई है। जिस दिन से भृगु ऋषि ने भगवान के वक्ष स्थल पर लात मारी है, उस दिन से लक्ष्मी जी ने घूंघट खींच लिया है, जैसे माता एक घूंघट खींच कर बैठी है। जिस दिन से भृगु मुनि ने भगवान के वक्ष स्थल पर लात मारी है, उस दिन से ब्राह्मणों के सामने लक्ष्मी जी ने घूंघट खींच लिया है, उस दिन से लेकर आज तक वो घूंघट हटा नहीं है। अब देखेंगे ब्राह्मण के पास इतना धन नहीं होता, परंतु भगवान की कृपा से ब्राह्मण भी माला माल हो सकते हैं। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए तो फिर वहां लक्ष्मी जी की कुछ नहीं चलती। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था जिसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, धनी थे, सुखी थे। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। सभी प्रकार का सुख था, परंतु एक दुख उसके हृदय में यह था कि धुंधली के साथ आत्मदेव विवाह किए बहुत समय बीत गया, परंतु संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और जिसको संतान प्राप्त नहीं होते हैं, संसार के लोग उसे अपशुकुन मानते हैं। तो एक दिन बहुत दुखी होकर यह आत्मदेव नाम के ब्राह्मण आत्महत्या करने के लिए चले गए। दौड़ते हुए उस तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उसी समय एक तेजस्वी सन्यासी वहां पर आया और आकर इस आत्मदेव ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया और पूछा, क्या करने जा रहे हो, क्या हो गया है तुमको? तब आत्मदेव ने कहा, देखो मेरे जीवन में बहुत दुख है। दुख क्या है? कहा, विवाह किए इतना समय बीत गया, परंतु संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस तेजस्वी सन्यासी ने आत्मदेव ब्राह्मण का भविष्य देखकर कहा कि ब्राह्मण देवता, तुम एक जन्म के लिए रो रहे हो, केवल इस जन्म में ही नहीं, आने वाले 7 जन्म तक तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं होगी। परंतु ब्राह्मण जो होते हैं बहुत बुद्धिमान होते हैं। ब्राह्मण ने सोचा कि यह सन्यासी मेरे 7 जन्म के बारे में जान सकता है, तो मुझे पुत्र क्यों नहीं दे सकता है? तुरंत दोनों हाथ जड़कर सन्यासी के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा कि आप मुझे एक संतान दो, पुत्र दो। तब सन्यासी ने देखा कि बहुत विनय कर रहा है, इसलिए उस सन्यासी ने एक फल दिया। कहा कि ब्राह्मण, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, गर्भवती हो जाएगी, 9 महीने के बाद एक पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव ब्राह्मण उस फल को लेकर अपने घर आए और अपनी पत्नी धुंधली को और फल दे दिया। धुंधली ने हाथ में फल लेकर सोचा कि यदि मैं यह फल खा लूंगी तो फिर गर्भ होगा, पेट बढ़ जाएगा, और उस गर्भवती जब हो जाऊंगी तो संसार के लोग मेरा बड़ा पेट देखकर हंसेंगे, और फिर प्रसव के समय कितनी वेदना होती है, और कहीं सुखदेव गोस्वामी की तरह 10-10, 12-12 साल तक ये बाहर ही नहीं निकला तो, और ऐसी गर्भवती स्थिति में जब मैं मायके जाऊंगी तो मुझसे जो बड़ी बहू है मेरा सारा धन हड़प लेगी। तो फल हाथ में लेकर सोचने लगी, सोची मैं फल नहीं खाऊंगी। उसी समय उसकी बहन उनके घर पर आई और कहा, बहना क्यों दुखी हो, क्या बात है? कहा कि ये फल मेरे पति ने दिया है जिससे मैं गर्भवती होऊंगी, परंतु मुझे यह फल नहीं खाना है। उनकी बहन ने कहा, कोई बात नहीं, ये फल गाय को खिला दो, तो धुंधली ने पूछा पुत्र तब कैसे मिलेगा, क्योंकि 9 महीने के बाद ब्राह्मण पूछेंगे। कहा कोई बात नहीं, मेरे गर्भ में एक बालक है, जैसे ही इसका जन्म होगा मैं तुम्हारे पास भेज दूंगी। तो इस प्रकार से प्लान बनाया, वह फल गाय को खिलाया और 9 महीने के बाद जब उसकी बहन के वहां लड़के का जन्म हुआ, उस लड़के को यहां लाया गया और आत्मदेव को बताया गया कि धुंधली के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ है। जब आत्मदेव को पता चला कि धुंधली के गर्भ से बालक का जन्म हुआ, प्रसन्न हो गया, कई सारे ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, ब्रह्म भोजन कराया, भंडारा किया, कई लोगों को उपहार दिया, गायों का दान किया, बहुत सुंदर पुत्र के जन्म के अवसर पर खुशियां मनाई। और उसके दूसरे दिन, क्योंकि वह फल गाय को खिलाया था इसलिए गाय के गर्भ से एक मनुष्य संतान पैदा हुआ। आत्मदेव की तो सुख का पारोवार नहीं रहा, सोचने लगा आज तक मेरी पत्नी के गर्भ से जन्म नहीं होता था और जब कृपा हुई तो गाय भी मनुष्य को जन्म देने लगी, प्रसन्न हो गया। अब गाय के गर्भ से जो बालक का जन्म हुआ था उसका कान गाय के समान था, लंबा, उसके कर्ण गाय के समान होने के कारण उसका नाम गोकर्ण रखा गया। और धुंधली का जो पुत्र था उसका नाम धुंधुकारी रखा गया। ये दोनों बालक धीरे 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 बड़े होते गए, परंतु गोकर्ण महाभागवत जो गोकर्ण थे भगवान के परम भक्त बने और धुंधुकारी महाखल, और धुंधुकारी जो था महाखल हुआ, दुष्ट हुआ, पापी हुआ। कैसा पापी हुआ? कहते हैं कि संसार में किसी के लड़के रास्ते में खेलते होते हैं तो लड़के को उठाकर कुएं में फेंक देता। लड़के के माता पिता ढूंढते रहते हैं पर कहीं नहीं मिलता। किसी के घर पे जाकर चोरी करना, मांसाहार करना, मदिरा पीना, सभी प्रकार के गर्हित काम करने लगा। और धीरे 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 उनके यह दुष्टाचार अत्याचार बढ़ता गया। गोकर्ण ने देखा कि मेरा भाई इस प्रकार से अत्याचार करता है, घर छोड़कर तीर्थाटन करने के लिए निकल पड़ा। और यहां धुंधुकारी धीरे 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 अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दिया। पिताजी बहुत दुखी हुए। देखिए भक्तों, शास्त्र की यह सब घटना से बहुत उपदेश लेना चाहिए कि पुत्र के रूप में यदि अच्छा पुत्र हमें मिला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो धुंधुकारी जैसे पुत्र मिलेंगे, हमारे पास कितनी भी संपत्ति होगी सब पाप में नष्ट कर देंगे। मान लीजिए पिता ने अच्छे कर्म किए हैं और अच्छे कर्म करके धन संपत्ति एकत्रित की है, परंतु पुत्र यदि खल निकल गया, पिता ने तो अच्छा कार्य किया है परंतु पुत्र ने पिता की संपत्ति को गलत जगह पर इस्तेमाल किया तो स्वर्ग में गए हुए पिता को भी वह नरक में भेज देगा। पुत्र भक्त मिलना बहुत सौभाग्य की, सुख की बात, नहीं तो पुत्र दुष्ट हो गए। भगवत गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन का यही प्रश्न है कि कृष्ण कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्यत अधर्म अभिभवत्युत अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी और संकरो नरकायेव कुल ज्ञाना कुलस्य च पतंती पितरो येषा लुप्त पिंडो दकह क्रिया। और यह वर्ण संकर प्रजा अपने पितरों को पतंती नरक में भेजेंगे, उसका पतन करा देंगे। तो पुत्रों को संस्कार देना, पुत्र को भक्त बनाना, ये पिता का कर्तव्य होता है। यदि पुत्र अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात, परंतु यदि धुंधुकारी जैसे पुत्र निकल गए तो फिर सारी संपत्ति को नष्ट कर देंगे। पिता की सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया। एक समय की बात, गोकर्ण ने उस आत्मदेव ब्राह्मण को उपदेश दिया, पिताजी देह मांस रुधिरम, यह देह मांस और खून से बना है, इस देह में क्या है? हड्डी मल मूत्र बाल कफ पित्त वायु इसके अलावा क्या है? और इस देह से बने हुए अपने पुत्र में तुम आसक्त हो? अपनी पुत्र की आसक्ति से मुक्त होकर अपना मन भगवान में लगाओ। जंगल में जाओ और वन में जाकर भागवत पढ़ो और भागवत पढ़कर भगवान की प्राप्ति करो। पुत्र के इस उपदेश को सुनकर आत्मदेव वन में गए, वन में जाकर भागवत पढ़कर भगवान के धाम को प्राप्त किए। और यहां पर धुंधुकारी ने देखा कि पिताजी चले गए हैं, तो एक दिन की बात, पांच पांच वेश्या के साथ विवाह करके, अब वेश्या का विवाह कभी नहीं होता है क्योंकि वेश्या का कोई पति ही नहीं होता, वेश्या का पति तो धन होता है, जब तक धन होता है तब तक वह साथ में रहती है, धन जाने पर वह भी चली जाती है। पांच पांच वेश्या को लेकर वह घर पर आया और उसकी मां ने जब यह दृश्य देखा, कौन मां अपने पुत्र के इस दृश्य को देख सकती है? सभी माओं के लिए यह उपदेश है, यदि अपने पुत्र को भक्त नहीं बनाया तो ऐसे दिन भी आ सकते हैं। इसलिए अपनी संतानों को पकड़कर भागवत कथा में बिठाना चाहिए ताकि इसे संस्कार मिले। तो बहुत दुखी होकर उनकी मां कुएं में आत्महत्या करके मर गई और धंधुकारी पांच पांच वेश्या के साथ रहने लगा। तो वेश्या तो रोज डिमांड करती थी कि मुझे ये साड़ी चाहिए, मुझे ये गहना चाहिए, मुझे वह चाहिए। वास्तव में पत्नी उसे कहते हैं जो पति के मन को समझकर उनके अनुसार चले, परंतु वेश्या क्या पति है और क्या पति के मन को समझेगी? दूसरे शब्दों में, आजकल की नारी जो अपने आप को पत्नी मानती है, वे अपने पति के मन के अनुसार यदि कार्य नहीं करती हैं तो वह पत्नी भी पत्नी नहीं, वेश्या है। पति की इच्छा के अनुसार पत्नी को रहना चाहिए, क्योंकि उस पत्नी के जो पिता होते हैं वह उस लड़की का हाथ पति के हाथ में सौंपते हैं और आशीर्वाद देते हैं। उस लड़की का जो पिता होता है आशीर्वाद देता है कि बेटी जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तेरे पति की आज्ञा का तू पालन करेगी। तो पत्नी को चाहिए पति के मन की बात को समझकर उसकी इच्छा पूर्ण करे। आज तो देखा गया है मन की बात तो दूर रही, पति बेचारे बोल बोल कर थक जाते हैं फिर भी पालन नहीं होता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं आज की पत्नी, अब पति का अर्थ होता है पालन करने वाला, परंतु आज की पत्नी अपने पति को ऐसा रखती है जैसे हम लोग डिब्बे में चाय की पत्ती को रखते हैं। चाय की पत्ती को जैसे डिब्बे में बंद करके रखते हैं वैसे अपने पति को रखते हैं, इसे पत्नी नहीं कहते हैं। पत्नी पति के अधीन होती है। तो यहां पांच पांच वेश्या है और रोज डिमांड कर रही है ये चाहिए वह चाहिए, और बेचारा ये एक पति थक गया इसकी डिमांड पूरी करते थे, और डिमांड पूरी करने में भी इसका बिजनेस थोड़ी ना था, कोई मिठाई की दुकान भी नहीं थी और कोई लूज भी नहीं चल रही थी, कोई डायमंड की फैक्ट्री भी नहीं थी, अब जो भी था चोरी करके लाता था। तो इसने सोचा कि रोज छोटी मोटी चोरी करनी पड़ती है, राजा के घर पर एक बड़ा हाथ मार दूं ताकि जीवन भर चोरी करने की चिंता मिट जाए। गया एक दिन और राजा के घर पर चोरी किया, और पूरा दो तीन बैग भरकर अपने घर पर लाया। और यह वेश्याओं ने देखा कि इतना सारा धन लेकर आया है, तो आए ऑफिस से आया तो स्नान करने के लिए तो जाना होगा, तो ये धुंधुकारी स्नान करने के लिए गया। और ये पांचों वेश्या सोच रहे कि इतना बड़ा हाथ मारकर आया है, यदि राजा ने इसे पकड़ लिया, राजा के द्वारा ये पकड़ा गया, तो चोर तो दंडनीय है ही, परंतु चोरी का माल इस्तेमाल करने वाला भी दंडनीय है, हमको भी राजा जेल में डाल देंगे, तो क्या किया जाए। वेश्याओं ने सोचा एक काम करते हैं, इसे मार डालते हैं और ये धन हम लोग लेकर भाग जाएंगे। धुंधुकारी आया और उसे बिस्तर पर सुलाया। एक वेश्या ने उसके हाथ बांध दिए, एक ने पांव बांध दिए। और पद्म पुराण में लिखा है कि गरम गरम कोयले ला लाकर उस धुंधुकारी के मुख में ठोस ठोस कर भर कर उस धुंधुकारी को मार डाला। और सोचा ये तो मर गया है, कहां डाले पता चल जाएगा, कहते उसी के घर पे बहुत बड़ा खड्डा किया और धुंधुकारी को उसी घर पर गाड़ दिया। और ये पांचों वेश्या धन लेकर चली गई। धुंधुकारी मरा, परंतु भक्तों शास्त्र का एक सिद्धांत है कि जो लोग विधाता के द्वारा भगवान के द्वारा दी गई उम्र पर नहीं मरते हैं, तो फिर उसे यहां पर भटकना पड़ता है। कोई आत्महत्या कर ले या कमोत हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए। उदाहरण के तौर पर समझिए कि मान लो विधाता के द्वारा भगवान के द्वारा किसी मनुष्य को 90 साल की आयु मिली है, तो मान लो 60 साल की उम्र में उसने आत्महत्या कर ली या किसी ने मार डाला या एक्सीडेंट हो गया। 90 साल की आयु है और 60 साल की उम्र में मर गया, तो फिर 30 साल तक उसे यहां पर सूक्ष्म शरीर में भटकना पड़ेगा, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। और यदि पाप किया है, पापी व्यक्ति है, तो उसे प्रेत शरीर में भटकना पड़ेगा, प्रेत बनेगा, क्योंकि इसने पाप किया था, कमोत हुई थी, इसलिए यह धुंधुकारी प्रेत बन गया। और प्रेत शरीर में बहुत दुख होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं बहुत दुखी हूं, आत्महत्या कर लूंगी तो सुखी हो जाऊंगी। माताओं में ज्यादा चलता है, मैं मर जाऊंगी, जहर पी लूंगी, लेकिन पीते नहीं है कभी। परंतु देखिए, मरने से दुख कम नहीं होता है, मरने से उल्टा दुख बढ़ता है। धुंधुकारी प्रेत शरीर प्राप्त किया, दुख बढ़ गया। और यह बात गोकर्णों को पता चला कि मेरा भाई की मृत्यु हो गई है, इसलिए वे गया में जाकर श्राद्ध करने के लिए, गया क्षेत्र सबसे उत्तम है क्योंकि आज भी वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश उपस्थित है। गया में जाकर अपने भाई के लिए श्राद्ध तर्पण किया और फिर घूमते घूमते गोकर्ण अपने घर पर वापस लौटा। एक दिन की बात, रात को 1 बजे सो रहा था, उसके सामने अचानक विचित्र दृश्य आने लगे। कभी भालू खड़ा होता है, कभी सिंह खड़ा हुआ, पक्षी पशु पक्षी की आवाज आने लगे। तब गोकर्ण ने कहा, तुम कौन हो, मुझे बताओ तुम कौन हो। तब बेचारा, उसे कुछ बोलना था परंतु बोल नहीं पाया। तब गोकर्ण ने सोचा कि लगता है प्रेत योनि में है। तब गोकर्ण ने अपने हाथ में जल लिया, जल में मंत्र अभिनिहित किया और जल लेकर जब उस आवाज के ऊपर छिड़का, तुरंत उसमें बोलने की शक्ति आई। तब धुंधुकारी मनुष्य भाषा में बोलता है कि भाई मैं हूं, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं। गोकर्ण ने कहा, यहां क्या कर रहे हो। धुंधुकारी ने कहा कि मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूं। गोकर्ण ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे लिए श्राद्ध किया था, वो भी गया में जाकर श्राद्ध किया था, फिर भी भटक रहे हैं। तब धुंधुकारी ने कहा कि भैया, एक नहीं 1000 बार गया में जाकर स्नान करोगे फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैंने बहुत पाप किए हैं। तब क्या किया है? कहा भैया मैं इस प्रेत योनि में बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, कृपया करके मुझे यहाँ से मुक्त कराओ। तो गोकर्ण की तो बुद्धि काम करना बंद कर दी। अब जिसका 1000 बार गया में स्टार्ट करने पर उद्धार न हो, मुक्ति न हो, उसकी मुक्ति कैसे हो? तब गोकर्ण ने कहा एक काम करो, मैं कल अपने गांव के ब्राह्मणों से पूछ लेता हूं और कल रात को जवाब दूंगा। दूसरे दिन सुबह उठकर सभी ब्राह्मणों के पास गोकर्ण गए और पूछे कि जिस प्रेत की 100 बार गया में श्राद्ध करने के बाद भी मुक्ति न हो, ऐसे व्यक्ति की मुक्ति करने के लिए क्या किया जाए? बड़े बड़े ब्राह्मणों ने अपनी पोथी पत्रा को लेकर खोल खोल कर पढ़ने लगे, परंतु कहीं भी इसका उत्तर नहीं मिला। तब अंत में ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर कह दिया, इसका उत्तर हमारे पास नहीं है, परंतु भगवान श्री कृष्ण के प्रथम शिष्य सूर्यदेव इसका उत्तर दे सकते हैं। सूर्यदेव को पूछो। तब गोकर्ण ने अपनी तपस्या के बल पर सूर्य की गति को रोक दिया। सूर्य देवता विवस्वान प्रकट हुए। गोकर्ण ने सूर्य को पूछा कि बताओ 100 बार भी श्राद्ध करने के बाद गया में जिसका उद्धार, जिसकी मुक्ति न हो, उसको क्या करना चाहिए? तब सूर्य देव ने उत्तर दिया, देखो ऐसे प्रेत का उद्धार करने के लिए अन्य और कोई उपाय नहीं है। यदि तुम तुम्हारे भाई का उद्धार करना चाहते हो, यदि उसे प्रेत योनि से भगवान के धाम में पहुंचाना चाहते हो, तो एक ही उपाय है, वो है 7 दिन तक श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन करो और यह कथा उसे अर्पण कर दो। यदि यह कथा उसे अर्पण करोगे तो उसकी प्रेत योनि से भगवत धाम में जाने पर मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति को प्राप्त होगा। इतना कह के सूर्यदेव चले गए। गोकर्ण ने पूछा भागवत सप्ताह कराना है, कौन करेगा? गांव वालों ने कहा आपसे अच्छी कथा कौन कर सकता है? तब गोकर्ण जी इस कथा के वक्ता बने और इस गांव में रहने वाले सब लोग इसके श्रोता बने। आजू बाजू के गांव के भी आ गए और उस समय वहां पर एक बांस का बंबू गाड़ा गया। उस बांस के बंबू में प्रेत योनि में जो धुंधुकारी था वो बंबू में आकर बैठ गया। कहते उस बंबू में 7 गांठे थी और जैसे यहां कथा प्रारंभ हुई, एक दिन समाप्त हुआ, एक गांठ फट गई, दूसरे दिन में दूसरी गांठ, वैसे 7वां दिन जब भागवत सप्ताह का समाप्त हुआ, 7वें दिन में 7वीं गांठ फटी और आकाश से भगवान का एक सुंदर विमान जिसमें शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर धारण किए हुए भगवान के पार्षद आए और उस बंबू से, उस बांस से जो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ धुंधुकारी था, वह धुंधुकारी चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और भगवान के पार्षद उस धुंधुकारी को उसके विमान में बिठाकर भगवान के धाम में ले जाने के लिए तैयार हो गए। हरे कृष्णा हरे
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
तैयार हो गए। देखिए धुंधुकारी जो प्रेत योनि में था और 7 दिन कथा सुनकर वे भगवान के धाम में जाने के लिए, परंतु जैसे ही धुंधुकारी को लेकर वह भगवान के पार्षद विमान से उड़े, तब तक तो सभी गांव वालों ने विमान को पकड़ लिया, हम नहीं जाने देंगे। क्यों भाई? कहते हमने भी कथा सुनी है, इसने भी सुनी है, तो आप उसको लेकर जा रहे हो, हमको लेकर क्यों नहीं जा रहे हो? सत्य बात है, प्रश्न भी बहुत अच्छा है। पूरे गांव वालों ने कथा सुनी थी तो एक व्यक्ति को ही भगवान के धाम में क्यों, सब लोग जाने चाहिए। इसका उत्तर दो। भगवान के पार्षदों ने कहा देखो कथा तो आप सब लोग ने सुनी है, परंतु सुनने सुनने में कुछ अंतर है। क्या अंतर है? गोकर्ण जब यहां पर कथा सुनने बैठा तो अपना मन और बुद्धि समाहित करके एक नजर एक ध्यान से कथा सुन रहा था और कथा के बाद भी वे यहीं पर बैठता था और आप लोग तो चाय पीने के लिए चले जाते थे। गांव वालों ने पूछा कि आप हमें लेकर क्यों नहीं जा रहे हो, तो आपको तो खैनी भी खानी है, चाय भी पीनी है, प्याज लहसुन भी खाना है, भोग भी भोगना है और भगवान के धाम में जाना है, ये दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती। गोस्वामी कहते हैं कि मुंह फुलाना, मुंह में हवा भरकर मुंह फुलाना और हंसना, ये दोनों एक साथ हो सकता है? जरा करके देखिए, मुंह फुलाना और हंसना ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। वैसे ही आप भोग भी भोगो और कथा भी सुनकर धाम में जाओ, ये दोनों एक साथ? कथा सुनने के लिए तो सतर्क रहना पड़ेगा। कहते ध्यान से, कभी कभी होता है हमारा शरीर तो यहां पर शरीर को लाकर बिठा देते हैं, परंतु मन घर पर छोड़ के आते हैं। बच्चे क्या कर रहे होंगे, अब गाय का दूध कौन दोएगा, ये कौन करेगा, बिजनेस कौन करेगा, छोड़कर आते हैं। परंतु शरीर मन बुद्धि सबको यहां पर बिठाकर यदि हम कथा सुनेंगे तो 7 दिन काफी है भगवान के धाम में जाने के लिए, नहीं तो 70 साल तक आप सुनते रहिए, भगवान कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए कथा सुनने के लिए योग्य पात्रता होनी चाहिए। तो भगवान के पार्षद ने कहा कि आप श्रद्धा से कथा सुनोगे तो आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं, दूसरी बार कथा का आयोजन करो, दूसरी बार सुनो। तब गांव वालों ने दूसरी बार भागवत सप्ताह का आयोजन किया। अब दूसरी बार तो सब लोग ध्यान से बैठते थे, कथा स्थान छोड़कर कभी नहीं जाते थे, वक्ता से पहले आ जाते थे और उत्कंठा के साथ बिना सोए मन बुद्धि समाहित करके कथा सुने। और 7वें दिन की बात पद्म पुराण में वर्णन है, जब 7वें दिन वह कथा समाप्त होने जा रही थी उस समय आकाश के मार्ग से 1000 विमान आए और पूरे गांव को उस गांव में बिठा, उस विमान में बिठाकर भगवान के धाम में लेकर चले गए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम Krishna Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna
राधा श्याम सुंदर राधे जय
राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे
जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे
राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे
जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय
श्याम सुंदर भगवान की श्री वेद व्यास जी लिखते हैं कि इतना बड़ा पापी धुंधुकारी जो इतना बड़ा पापी था जिन्होंने कोई पाप नहीं छोड़ा था और ऊपर से प्रेत शरीर में था पापी था और साथ ही साथ प्रेत शरीर में था और उन्होंने भागवत कथा 7 दिन श्रवण की भगवान की धाम को प्राप्त किया। तो हम तो उतने ज्यादा पापी भी नहीं है और हमारे पास उससे कोटि गुना अच्छा शरीर भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है। अब ऐसे शरीर से भागवत कथा की हम श्रद्धा से श्रवण करें तो हमें भी क्यों भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, अतः अवश्य होगी। करना क्या होगा, 7 दिन तक मन और बुद्धि लगाकर भागवत कथा का श्रवण करना होगा। इस प्रकार ये भागवत की अनंत अनंत महिमा है। साक्षात भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न कराने वाला यह ग्रंथ है। तो ऐसा ग्रंथ हम यहाँ पर 7 दिन तक श्रवण करेंगे। पर भागवत कथा श्रवण करते समय कम से कम 5 चीज का होना बहुत आवश्यक है। सब लोग समझ लीजिए, 5 चीज भागवत कथा में होनी चाहिए। सबसे पहले भागवत कथा करने के लिए स्थान, क्योंकि पद्म पुराण में यह वर्णन है भागवत विधि। तो भागवत कथा करने के लिए स्थान होना चाहिए। स्थान कैसा होना चाहिए? सत्व गुणी स्थान, जहां पर किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं, और जहां पर 1,000-10,000 लोग भी बैठे हो तो 10,000 का एक ही काम होना चाहिए। 10 सुन रहे हो और 3 बात कर रहे हो तो ऐसा काम, ऐसी जगह पर भागवत नहीं हो सकती। तो जहां भागवत कथा करनी है स्थान चाहिए। और गीता में भी भगवान कहते हैं सत्व संजायते ज्ञानम, रजसो लोभ एवच प्रमाद मोह तमसा भवतो अज्ञानम एवच। तमोगुण में यदि कोई हो तो तुरंत निद्रा आ जाएगी। रजोगुणी व्यक्ति को लोभ उत्पन्न होता है, और जहां सत्वगुण हो वहां पर स्वाभाविक ज्ञान प्राप्त होता है। यदि यहां पर सत्वगुण रहेगा तो निश्चित यह ज्ञान हमारी बुद्धि में टिका हुआ रहेगा। और सत्वगुण का अर्थ होता है शांति। और आपसे और हम आपसे और कुछ नहीं चाहते हैं, एक ही चीज चाहते हैं, शांति। सब लोग एक ही ध्यान से, एक ही भाव से, श्रद्धा से यहां पर सुनेंगे। स्थान। तत्पश्चात भागवत में दूसरी चीज की आवश्यकता है, वो है गान। स्थान के साथ साथ गान भी होना चाहिए। केवल मैं बोलता ही रहूं और गान ना हो तो आनंद नहीं आएगा। गान चाहिए, और गान में भी कोरा ज्ञान गान नहीं होना चाहिए। गान के साथ साथ नाच भी होना चाहिए, नृत्य भी होना चाहिए। मैंने राह देखा, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक राह देखा, कोई खड़ा नहीं हुआ। देखिए बिना नाचे भगवान को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है। जैसा भी हो, जैसे भी नाच सके, और बिना शर्माए लज्जा छोड़कर श्याम सुंदर के लिए नाचना है, जगत के लिए नहीं नाचना है। और एक भक्त सुंदर कहते हैं यदि श्याम सुंदर भगवान कृष्ण के लिए नहीं नाचोगे तो फिर माया के लिए नाचना पड़ेगा। अब 2 बात है, या तो माया के लिए नाचो या भगवान के लिए नाचो। अच्छा है भगवान के लिए नाचे, माया तो नचा ही रही है हमें यहां से वहां। तो भगवान के सामने अब जब भी कीर्तन हो भजन हो तो जो भक्त इच्छा करे नाचना है तो यहां आगे नाचने वालों के लिए जगह छोड़ी है, तो नाचने वालों का स्वागत है। बहुत प्रेम से उत्साह से नाच सकते हैं। तो कथा में स्थान होना चाहिए, दूसरा गान होना चाहिए, और गान में नाच भी होना चाहिए उन्मुक्त भाव से। और तीसरा है ज्ञान। कथा में केवल कथा 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 सुनते रहेंगे परंतु सिद्धांत और ज्ञान नहीं होगा तो सिद्धांत और उसके साथ साथ आपका ध्यान भी होना चाहिए। ध्यान का होना बहुत जरूरी है, और ध्यान के साथ साथ आपका कान भी होना जरूरी है। नहीं तो बैठे हैं यहां और कान है बहुत दूर जगह पर। तो स्थान, गान, ज्ञान, ध्यान, कान, कथा में ये 5 चीज होना बहुत जरूरी है। और भगवान की कृपा से यहां 5ों चीज मिल सकती है, हमें थोड़ा सा प्रयास करना है बस। इस प्रकार से भागवत विधि का वर्णन। और तत्पश्चात यदि मन में जिज्ञासा हो कि ये भागवत है क्या, कि भागवत के लिए इतना अनुष्ठान, इतने पैसे खर्च करना, इतने लोग दूर दूर से आना, ये भागवत चीज क्या है? यदि हमारी भाषा में कहूं तो यह भागवत साक्षात भगवान के मुख से निकला हुआ ग्रंथ है। भागवत साक्षात भगवान के मुख से निकला है। कहते हैं यह भागवत वैकुंठ में भगवान नारायण अपने मुख से बोले हुए हैं और उस भागवत में शत कोटि 100 करोड़ श्लोक है। ये तो कृपा है वेद व्यास जी की, उस 100 करोड़ श्लोक में से जो मुख्य मुख्य था वो 18,000 श्लोक हमको दिया, नहीं तो ये भागवत करने के लिए 1 साल लगता। 7 दिन आप लोग आए हो समय निकाल कर, 1 साल यदि लगातार बोला जाए तब जाकर भागवत कथा होती। भगवान तो जानते थे 7 दिन भी निकालना कितना परिश्रम होता है, तो ये लोग 1 साल तो कहीं नहीं कभी नहीं निकाल पाएंगे, तो उसे बहुत कम 1 करोड़ श्लोक का सार 18,000 श्लोक में भगवान ने दे दिया। तो यह भागवत भगवान के मुख से निकला हुआ ग्रंथ है और इस भागवत को पंचम वेद कहा जाता है। इतिहासम पुराणम पंचम वेदानाम वेदम, 4 वेद तो आप जानते हैं, भागवत 5वां वेद है। समस्त वेद उपनिषदों का सार है, श्रीमद भागवत समस्त वेद उपनिषद का सार है। तो प्रश्न हो तो वेद और उपनिषद ही पढ़ लेंगे, भागवत पढ़ने की क्या जरूरत है। नारद मुनि को भी एक बार ये प्रश्न हुआ था, भागवत को उपनिषद और वेदों का फल कहा गया है। कहते हैं भागवत वेद और उपनिषदों का सार रूपी फल ही है, तो वेद और उपनिषद पढ़ेंगे। तब कहते हैं कि एक वृक्ष होता है और वृक्ष में कई सारे भाग होते हैं, उसमें थड़ भी होता है, डाली भी होती है, पत्ते भी होते हैं और फल भी होता है। परंतु सारे वृक्ष का जो सार होता है वह सार उस फल में आता है, ठीक उसी प्रकार। और वह फल जो है बहुत मधुर लगता है, ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत वेद और उपनिषद का सार ही है। जैसे फल होता है वे पेड़ का सार है, परंतु जितना आनंद उस फल की डाली खाने में और पत्ते खाने में नहीं आएगा, उतना आनंद उस पेड़ के फल को खाने में आता है। वैसे ही वेद और उपनिषद पढ़ने में सुनने में उतना आनंद नहीं है जितना आनंद भागवत रूपी फल को सुनने में। तो भागवत समस्त वेद उपनिषद का फल है, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाला अद्भुत ग्रंथ है, काल रूपी भय से मुक्त कराने वाला और समस्त दुखों से मुक्त कराकर भगवान के पास पहुंचाने वाला, साक्षात भगवान को ही प्रदान कराने वाला श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। और इतना ही नहीं, ये उभयात्मक ग्रंथ कहा गया है। ये भागवत श्रोतव्य भी है और सेव्य भी है। भागवत की सेवा 2 प्रकार से हो सकती है। भागवत की एक सेवा तो सुनकर कर सकते हैं, भागवत को सुनना ही भागवत की सेवा है। और भागवत की दूसरी सेवा कहते हैं सेव्य, अर्थात भागवत को भोग लगाकर, उसकी आरती करके, उसकी पूजा करके, उसको प्रणाम करके भी भागवत की सेवा होती है। तो हमें यह दोनों प्रकार से भागवत की सेवा करनी चाहिए। और भागवत सभी पापों को नष्ट करने वाला है, इसलिए तो कहते हैं तेने ये वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे दर्शनात् सेवनात् श्रवणात् पाठात् पाप मोचिनी। श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसका कोई श्रवण करता है, यहां तक भागवत को कोई यदि देख भी लेता है, तो उसका सभी पाप जलकर भस्म हो जाता है। कहते हैं भागवत सुनने के लिए जो आ रहा है और जहां से भागवत सुनने के लिए निकला है, तो भागवत के प्रति वे जितना कदम बढ़ा रहा है, प्रत्येक कदम पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रत्येक कदम पर आप वहां से एक एक कदम बढ़ाते हुए यहां पर आ रहे हो, तो कदम कदम पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कितनी महिमा है, और ज्यादा क्या बताऊं, यह भागवत साक्षात भगवान ही है। इसके ज्वलंत प्रमाण द्वापर युग, भगवान अपनी लीला समाप्त करके जब अपने धाम में जा रहे थे, उद्धव जी रोने लगे, कहने लगे प्रभु आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, धर्मम क शरणम गत, ये धर्म किसकी शरण में जाएगा। तब उद्धव जी के देखते देखते भगवान श्री कृष्ण इस भागवत ग्रंथ में प्रवेश हो गए। ये भागवत और कुछ नहीं, साक्षात भगवान की मूर्ति है। और इस भागवत में 12 स्कंद है, ये 12 स्कंद भगवान श्री कृष्ण के अंग है। कौन से अंग है, तो बहुत सुंदर लिखा है, पादो यदि यो प्रथम तू द्वितीय तृतीय तुरियो कथितो यदूरु नाभिस्तता पंचम एव षष्ठो भुजा तरंगो युगल तथान्यो कंठस्तु रामं नवमो यदियो मुखारविंदं दशम प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाट पटम् शीरो तु द्वादश एव भाति पादो यदियो प्रथम द्वितीय तृतीय तुरियो कथितो यदो। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद भगवान के 12 अंग हैं। कहते हैं पादो यदियो, श्रीमद् भागवत के प्रथम और द्वितीय दो स्कंद भगवान श्री कृष्ण के चरण हैं। श्रीमद् भागवत के तृतीय और चतुर्थ स्कंद भगवान श्री कृष्ण के कटी के नीचे का भाग है। श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद भगवान श्री कृष्ण की नाभि है। श्रीमद् भागवत का छठा स्कंद भगवान का वक्षस्थल है। श्रीमद् भागवत का सप्तम और अष्टम स्कंद भगवान की दोनों भुजा है। श्रीमद् भागवत का नवम स्कंद भगवान श्री कृष्ण का कंठ है। और श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद भगवान श्री कृष्ण का मुख है। और श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद भगवान का भाल है। और श्रीमद् भागवत का 12 स्कंद भगवान का तिलक है। इस प्रकार ये 12 स्कंद भगवान के अंग ही है, अर्थात ये भागवत और कुछ नहीं भगवान ही है। भगवान के पास बैठने पर जितना आनंद मिलता है उतना ही आनंद ये भागवत कथा में बैठने पर मिलता है। इस प्रकार ये भागवत साक्षात भगवान की वांग्मयी मूर्ति है। और ये भागवत की परंपरा अनेकों लोगों में चली है। भागवत की प्रथम परंपरा, ये भागवत सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा विष्णु और महेश को सुनाया था। भागवत की दूसरी परंपरा, ये भागवत भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया। भगवान श्री शंकरषण ने सनत कुमार को सुनाया। सनत कुमार ने सांख्ययान मुनि को सुनाया। सांख्ययान मुनि ने देवताओं के गुरु बृहस्पति को सुनाया और पराशर ऋषि को सुनाया। पराशर ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि के कहने पर मैत्रेय मुनि को सुनाया और मैत्रेय मुनि ने इसी भागवत का ज्ञान आगे चलकर विदुर जी को दिया। यह है भागवत की दूसरी परंपरा। और भागवत की तीसरी परंपरा, यह श्रीमद् भागवत का ज्ञान भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने नारद को दिया। नारद जी ने वेदव्यास जी को दिया। वेदव्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को दिया। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित और शुद्ध गोस्वामी को दिया। और